एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में स्वागत। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये तो जैसे अमेरिकी इतिहास और पहचान की कई परतों को खोलती है। मैं बात कर रही हूँ ऑनरी फेनॉन जेफर्स के पहले उपन्यास द लव सॉन्ग्स ऑफ W.E.B. Du Bois की।
हाँ, और क्या जबरदस्त पहला उपन्यास है। जेफर्स को हम उनकी कविताओं से तो जानते ही थे, अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास और उनके अनुभव पर वो जिस गहराई से लिखती आई हैं,
बिल्कुल
वही संवेदनशीलता, वही ऐतिहासिक नजर अब इस उपन्यास में उतर आई है।
हाँ, भाषा में वो वजन साफ झलकता है। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी की बात नहीं करेंगे, है ना, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब उस बड़े सवाल से कैसे जुड़ती है कि जो बीत गया क्या वो वाकई बीत जाता है, या वो कहीं ना कहीं हमारी सोच में, हमारी कहानियों में, हमारे आज में भी जिंदा रहता है।
ये तो बहुत गहरा सवाल है। और किताब का नाम भी देखिए ना, द लव सॉन्ग्स ऑफ W.E.B. Du Bois। वो महान समाजशास्त्री, एक्टिविस्ट, जिन्होंने अश्वेत अमेरिकी अनुभव पर इतना काम किया।
हाँ, बिल्कुल। और जेफर्स जैसे उनके विचारों से सीधी बातचीत कर रही हैं, खासतौर पर Du Bois का वो डबल कॉन्शियसनेस यानी दोहरी चेतना वाला आइडिया।
अच्छा,
कि कैसे एक नस्लभेदी समाज में आप खुद को दूसरों की, मतलब श्वेत समाज की नजरों से देखने लगते हैं।
हाँ हाँ
और वो टैलेंटेड टेंथ वाला विचार भी कि समुदाय के 10% प्रतिभाशाली लोग आगे आकर नेतृत्व करेंगे।
राइट।
तो ये उपन्यास जैसे उन अनकहे प्रेम गीतों को आवाज दे रहा है जिन्हें Du Bois जानते थे कि अश्वेत लोगों के पास हैं पर जिन्हें दुनिया ने सुना नहीं।
दिलचस्प। तो कहानी क्या है? इसका स्ट्रक्चर भी तो सुना है काफी अलग है।
हाँ, बहुत अलग। कहानी की दो धाराएं हैं जो साथ साथ चलती हैं। एक है आइली पॉल गारफील्ड की कहानी, एक युवा अश्वेत लड़की जो 80-90 के दशक में बड़ी हो रही है।
ओके।
हम उसके बचपन से लेकर उसके कॉलेज जाने और फिर एक युवा महिला बनने तक का सफर देखते हैं।
और दूसरी धारा वो क्या है?
वो है द सॉन्ग्स, मतलब गीत। ये आइली की कहानी के बीच बीच में आते हैं, जैसे कोई पुरानी आवाज हो, कोई पुरखा हमें वक्त में पीछे ले जाता है।
अच्छा।
और आइली के पूर्वजों की कहानी सुनाता है, गुलामी से भी पहले के अमेरिका से शुरू होकर पीढ़ी दर पीढ़ी, गुलामी का दौर, फिर सिविल वॉर और उसके बाद जिम क्रो का जमाना।
ओ, जिम क्रो, यानी वो भयानक दौर जब साउथ में नस्ली अलगाव था, सारे वो कानून।
हाँ, वही अश्वेत लोगों के लिए अलग नियम, अलग जगह हैं, दोयम दर्जे की जिंदगी।
समझ गया।
और यही इस उपन्यास की खासियत है। ये दोनों कहानियां, आइली का आज और पुरखों का अतीत, ये लगातार एक दूसरे से मिलती हैं, टकराती हैं, एक दूसरे को समझाती हैं। अतीत की चोटें, वो संघर्ष, जमीन का छिन जाना, हिंसा, वो सब आइली और उसके परिवार की आज की जिंदगी में भी मौजूद है।
तो आइली का परिवार, आपने टैलेंटेड टेंथ का जिक्र किया था, क्या वो उस तरह के बैकग्राउंड से है?
हाँ, एक तरह से देखें तो बिल्कुल। आइली के माता पिता बेल और जेफ दोनों डॉक्टर हैं, सफल हैं, पढ़े लिखे, मतलब वो अश्वेत अभिजात वर्ग जिसकी बात Du Bois करते थे।
लेकिन
कुछ है वहां पे।
लेकिन घर का माहौल
वो थोड़ा अलग है।
उम्मीदों का बोझ तो है पर एक तरह की भावनात्मक दूरी है, खालीपन सा है।
ये तो होता है कई बार। बाहर से सब ठीक, अंदर से कुछ और।
और आइली वो कैसी है इस सब में?
आइली बचपन से ही थोड़ी अलग महसूस करती है, है बहुत समझदार, सेंसिटिव, पर उस पे जैसे एक अनजाने इतिहास का साया है। उसकी गर्मियां जॉर्जिया के एक छोटे से कस्बे चिकासेटा में बीतती है।
अच्छा, चिकासेटा।
हाँ, उनके परिवार का पुराना घर है और वहीं अपने अंकल रूट के साथ, जो एक तरह से परिवार के इतिहास के रखवाले हैं।
अंकल रूट, ये नाम दिलचस्प है।
हाँ, उनके साथ रहते हुए वो अपने अतीत की आवाजें सुनना शुरू करती है।
तो अंकल रूट जैसे एक ब्रिज है अतीत और वर्तमान के बीच।
बिल्कुल, वो आइली के लिए एक बहुत मजबूत सहारा बनते हैं। वो उसे कहानियां सुनाते हैं, अच्छी भी, बुरी भी, गर्व वाली भी और शर्म वाली भी। वो एक तरह से ग्रियर्ट का काम करते हैं।
ग्रियर्ट, जैसे वेस्ट अफ्रीका में होते हैं, जो पूरे समुदाय का इतिहास, गाने, किस्से याद रखते और सुनाते हैं।
हाँ, बिल्कुल वही। अंकल रूट वही भूमिका निभा रहे हैं। वो आइली की जिज्ञासा को समझते हैं और उसे परिवार की सच्चाई धीरे धीरे बताते हैं। पर आइली का रास्ता आसान नहीं है। उसके बचपन का एक बहुत गहरा जख्म भी है।
ओह।
यौन शोषण का शिकार हुई थी वो, जिसे उसने अंदर कहीं दबा दिया है। पर वो दर्द बार बार द टचिंग नाम की एक अजीब सी बेचैनी बन के सामने आता है। उसे समझ नहीं आता ये क्या है।
उफ, ये तो बहुत बहुत भारी है। और उसकी बहनें भी हैं।
हाँ, दो बहनें हैं, लिडिया और कोको। कोको थोड़ी बैकग्राउंड में रहती है, पर लिडिया, लिडिया की कहानी बहुत मार्मिक है और ज़रूरी भी है। लिडिया खूबसूरत है और उसकी स्किन का कलर काफ़ी लाइट है, जिसे अक्सर, मतलब अश्वेत समुदाय के अंदर, एक तरह का एडवांटेज माना जाता रहा है।
हाँ, ये कलरिज्म, रंग के आधार पर भेदभाव अपने ही समुदाय में, ये भी तो उसी श्वेत वर्चस्व की मानसिकता का ही असर है ना, जो हल्के रंग को बेहतर मानता है।
बिल्कुल, और लिडिया इसी का शिकार बनती है। उसकी माँ बेल, जो खुद गहरे रंग की हैं, वो लिडिया के हल्के रंग और अच्छे बालों को लेकर जैसे ऑब्सेस्ड हैं।
अच्छा।
पर यही बात लिडिया के लिए एक बोझ बन जाती है, पहचान का संकट, गहरा दुख। उसे लगता है वो कहीं फिट नहीं होती, न पूरी तरह श्वेत लगती है, न पूरी तरह अश्वेत। वो डू बॉयस की दोहरी चेतना यहाँ एक अलग ही अंदरूनी रूप ले लेती है।
और इसका अंजाम क्या होता है लिडिया के साथ?
अंजाम बहुत दुखद है। वो स्वीकृति पाने के लिए नशे की तरफ चली जाती है, खुद को नुकसान पहुंचाने वाले रिश्ते बनाती है, सेल्फ हेट्रेड, आत्मघृणा में फंस जाती है। उसकी कहानी दिखाती है कि कैसे नस्लीय इतिहास का जो जख्म है, वो पीढ़ी के अंदर ही एक तरह की मनोवैज्ञानिक बीमारी बन सकता है।
बाप रे, ये सुनकर ही अजीब लग रहा है। तो एक तरफ आइली है जो इतिहास की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश कर रही है।
हाँ।
और दूसरी तरफ लिडिया है जो उसी इतिहास के वजन तले जैसे टूट रही है।
एकदम सही। आइली आगे बढ़ती है, कॉलेज जाती है, इतिहास में पीएचडी करने का फैसला करती है। और मजे की बात यह है कि वो अपनी ही परिवार के इतिहास को अपनी रिसर्च का टॉपिक बनाती है।
अच्छा, तो जो पर्सनल खोज थी वो अब एकेडेमिक भी बन गई।
हाँ, अब वो पुराने दस्तावेजों में डूब जाती है, गुलामों की लिखी आपबीतियां पढ़ती है, लोगों से मिलती है।
और उसे क्या क्या पता चलता है अपने परिवार के बारे में?
उसे पता चलता है कि जड़ें कितनी मिली जुली हैं, अफ्रीकी, नेटिव अमेरिकन, श्वेत भी। पता चलता है कि उनकी जमीन कैसे धोखे से छीनी गई थी। पता चलता है कि उनके खानदान में सिर्फ प्यार नहीं, भयानक हिंसा भी शामिल रही है। और ये सब जानने के प्रोसेस के ही उसे अपने बचपन के उस दबे हुए जख्म का भी सामना करना पड़ता है। थेरेपी के जरिए वो यौन शोषण की यादें वापस आती हैं।
तो मतलब पर्सनल हिस्ट्री और कलेक्टिव हिस्ट्री दोनों एक साथ सामने आ रही हैं।
बिल्कुल, जेफर्स यही कमाल करती हैं। वो दिखाती हैं कि ये दोनों अलग हैं ही नहीं, निजी दुख और पीढ़ियों का दुख, ये सब आपस में गुंथा हुआ है। कहानी का क्लाइमैक्स चिकासेटा में ही आता है, जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है। वहां लिडिया ड्रग ओवरडोज का शिकार हो जाती है और फिर परिवार के सारे दबे हुए राज, कड़वाहटे, सब कुछ सतह पर आ जाता है।
ओ, तो क्या अंत में कुछ रेजोल्यूशन होता है, कुछ शांति मिलती है आइली को?
पूरी तरह शांति या सुलझने जैसा कुछ नहीं है। लिडिया बच तो जाती है, पर उसका आगे का रास्ता मुश्किल है। ये जैसे याद दिलाता है कि हर जख्म पूरी तरह नहीं भरता। लेकिन हाँ, आइली अपनी रिसर्च पूरी करती है, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये कि वो अपने इतिहास को अपनाना सीख लेती है, उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ, उसके दर्द के साथ, उसकी ताकत के साथ। वो अतीत की सिर्फ विक्टिम नहीं रहती, बल्कि उसकी जानकार वारिस बनती है।
जानकार वारिस बनना, ये बहुत पावरफुल बात कही। तो क्या हम कह सकते हैं कि किताब का एक सेंट्रल मैसेज यही है कि इतिहास से भागो मत, उसे समझो?
हाँ बिल्कुल, ये उपन्यास दिखाता है कि इतिहास कोई पुरानी दफन हो चुकी चीज नहीं है, वो एक जिंदा ताकत है। गुलामी, हिंसा, नस्लवाद, इनकी विरासत आज भी मौजूद है। लिडिया की लत में, बेल और जेफ की खामोशी में, आइली के उस टचिंग वाले दर्द में, हर जगह।
और ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले ट्रॉमा की बात है, जेफर्स दिखाती हैं कि कैसे चुप्पी साधने से दर्द खत्म नहीं होता, बल्कि वो और बिगड़कर अगली पीढ़ी तक पहुंच जाता है।
सही कहा।
आइली का जो सफर है वो यही बताता है कि सच का सामना करना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, वही हीलिंग की तरफ पहला कदम है।
और एक और बहुत जरूरी बात है, अश्वेत नारित्व, मतलब ब्लैक वुमनहुड की कॉम्प्लेक्सिटीज। अमेरिका में एक अश्वेत महिला होने का क्या मतलब है? वो नस्लवाद और लिंग भेद का दोहरा बोझ।
हाँ।
मजबूत बने रहने का प्रेशर, अपने इतिहास को ढोना, अपनी पहचान बनाना। आइली, लिडिया, बेल और उनकी पुरखिने, इन सब के जरिए जेफर्स इसकी कई परतें दिखाती हैं।
और कहानी कहने की ताकत, अपने अंकल रूट का जिक्र किया, वो अपनी जुबान से इतिहास को जिंदा रखते हैं।
हाँ।
और आइली अपनी रिसर्च और राइटिंग से, ऐसे समय में जहाँ इतिहास को मिटाने की कोशिशें हुई हों,
बिल्कुल,
वहाँ अपनी कहानी कहना ही अपने आप में एक बड़ा काम है, अपनी पहचान वापस पाने जैसा।
और वो जमीन, चिकासेटा की जमीन, वो भी तो जैसे किरदार है।
हाँ।
है ना, वो गुलामी के दर्द की गवाह भी है और आज़ादी और अपने पन का सिंबल भी। जमीन से वो रिश्ता जो दुख भी देता है और घर होने का एहसास भी।
हाँ, और भी सिंबल्स हैं, जैसे वो पकान का बाग, लगता है जैसे पुरखे ही वहां जड़ें जमाए खड़े हैं। पास की नदी, कभी वो शुद्धि का प्रतीक बनती है, कभी मौत और हिंसा का। और वो द टचिंग जो आइली महसूस करती है, जैसे जो दर्द कहा नहीं गया वो शरीर पर निशान छोड़ जाता है।
ऐसे पढ़ना ये वाकई एक गहरा अनुभव है। आपको गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, लेकिन साथ ही इंसान की हिम्मत, उसका लचीलापन देखकर हैरानी भी होती है। ये किताब अमरीकी इतिहास को देखने का नजरिया बदल देती है
और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जड़ों को कितना जानते हैं। हमारे अपने परिवारों में न जाने कौन सी कहानियां, कौन से राज छुपे होंगे।
सच का ये कहानी यही सिखाती है कि इतिहास से भागना तो मुमकिन ही नहीं है, उसे समझकर अपनाकर ही हम शायद खुद को पूरी तरह समझ पाएं।
और ये कि हर किसी को, हर समुदाय को अपने प्रेम गीतों की जरूरत होती है, ऐसी कहानियां जो सिर्फ दर्द न सुनाए बल्कि खूबसूरती, हिम्मत और जिंदा रहने की कहानी भी कहें।
यह संवाद यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।